नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए आप मेरा इंतजार करते हैं, ताकि हम सब मिलकर उसके वचन में से सीखने पाएं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि बेलशस्सर, जो नबूकदनेस्सर की पुत्री का बेटा था, नबूकदनेस्सर को अंत में परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया था, परंतु यह व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता था। अतः उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्र, जो नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लूटकर परमेश्वर के भवन से लाया था और अंत में अलग रखवा दिए थे, उन्हें निकालकर उनमें अन्य जाति अतिथियों के साथ भोजन परोसा और दाख मधु पिए। इस व्यवहार पर अप्रसन्न हो परमेश्वर ने भोजन कक्ष की दीवार पर उसके लिए एक संदेश लिख दिया, जिसे आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। हमारे जो श्रोता मित्र हैं दूर गांव में, पहाड़ों में, जंगलों में, जहां कहीं भी रहते हैं, आज हम सबके साथ में अपने वचन के द्वारा आप बोले और बातचीत करें। आज हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए, हमें कायल करने पाए, हम आपकी महत्वता को समझने पाए, आपसे प्रेम करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और चिंताओं में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए और चंगाई दें, उन्हें शांति प्रदान करें, ताकि आज के वचन के द्वारा वे आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने बताया कि परमेश्वर की उंगली से कुछ लिखा गया। तो आइए हम पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। अब परमेश्वर न तो स्वप्न में और न ही दर्शन में बात करता है, क्योंकि वह इस व्यक्ति से संबंध बनाना नहीं चाहता है, इसलिए वह सीधी बात कर रहा है। वह ऐसा अभक्त एवं अपवित्रता का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा, अतः वह भोजन कक्ष की दीवार पर लिख देता है। क्या परमेश्वर ने क्रोध में आकर यह लिखा था? निश्चय ही हाँ, और यह लिखने वाला वही था जिसने मिट्टी में लिखना आरंभ किया था। जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री प्रभु यीशु के पास लाई गई, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:1-11 पद में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय तो क्षमा का संदेश था, परंतु बेलशस्सर के लिए यह विनाश का संदेश था। उसने स्वर्ग के परमेश्वर का मान नहीं रखा जैसा कि उसने किया। हम पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 5:6 में, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ क्षण पहले तो वह नशे के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था, परंतु अब उसका नशा उतर गया। दीवार पर ऐसा दृश्य देखकर वह आतंकित हो गया और डर के मारे वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई बार हमारे जीवन में जब डर आता है तो यही स्थिति होती है। दानियल 5:7 में लिखा है, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। देखिए, उस लेख को पढ़कर उसका अर्थ बताने का पुरस्कार क्या था? देश का तीसरा शासक बनना। दानियल स्थिति को कैसा सही प्रकट करता है। ऐसा स्पष्ट विवरण लिखने वाले को तो निश्चय ही वहां उपस्थित होना था कि परिस्थितियों को ऐसी निकटता से जाने। नबोनिदुस राजा था और उसका पुत्र बेलशस्सर सहायक शासक था। हम देखते हैं ज्योतिषी लेख पढ़ने में असमर्थ रहे। दानियल की पुस्तक 5:8 में लिखा है, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। यहां पर ध्यान दीजिए, होश में आ जाने के बाद बेलशस्सर ने अपने ज्योतिषियों को बुलवाया कि उसे पढ़कर उस लेख का अर्थ उसे बताएं, परंतु वे बगल झांकने लगे। कहने का अर्थ है कि वे इसे समझ नहीं पाए और बचने की कोशिश करने लगे। यह तीसरा अवसर था कि बेबीलोन के पंडित सफल नहीं हुए। मेरे विचार में इस घटना ने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया होगा। दानियल के पुस्तक 5:9 में आगे लिखा है, इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। तो आप भोजन कक्ष के वातावरण में परिवर्तन का आभास कर सकते हैं। कुछ समय पहले वे सब नशे में थे और ठहाके लगा लगा कर हंस रहे थे, परंतु अब उनका नशा उतर गया है और सब के सब घबराए हुए हैं और हतप्रभ थे, उनके होश उड़ रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 5:10 में, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। यह रानी राजमाता थी, अर्थात नबूकदनेस्सर की पत्नी। घटना का समाचार पाते ही वह भोज कक्ष में पहुंची कि राजा से कुछ कहे। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 5:11 में, वह कहती है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। वहां पूर्वजों को पिता ही कहा जाता था। वह चाहे पिता हो या दादा हो या परदादा हो, उनको पिता ही कहा जाता था। आगे हम देखते हैं दानियल 5:12 में, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। मेरे प्रियो, राजमाता अपने नाती को संकट से बचाने आई थी। उसने कहा कि राजमहल में एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, वह परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, वही इसका अर्थ बता सकता है। दानियल राजा की उपहार अस्वीकार करता है, जिससे हम दानियल 5 उसके 13 से 14 पद में पढ़ते हैं। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश में से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से एक है? मैंने तेरे विषय में सुना है, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि नबूकदनेस्सर के मरणोपरांत दानियल को पदच्युत कर अलग कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि उसके मृत्यु के पश्चात दानियल को उस पद से हटा दिया गया था। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं, देख अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, बेलशस्सर दानियल को भी वही प्रलोभन देता है जो उसने ज्योतिषियों को दिया था, कि जो कोई उस लेख का अर्थ बताएगा उसे कंठमाला अर्थात सोने का माला पहनाया जाएगा और इसके साथ साथ वह तीसरे राजा के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं कि दानियल क्या कहता है। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। दानियल के मन में उसके लिए कोई भी सम्मान नहीं था। यदि राजा भय के कारण कांप नहीं रहा होता तो वह दानियल के निरादर का उससे दंड अवश्य देता। दानियल को इस उपहार की आवश्यकता ही क्या थी, वह राज्य तो मात्र कुछ घंटों के लिए ही रह गया था। उस लेख को पढ़ने से पूर्व दानियल राजा को एक उपदेश देता है जो शायद उसने कभी नहीं सुना हो। इस समय दानियल नबूकदनेस्सर के युग का एक युवक नहीं था, वह इससे युवा राजा के दरबार में एक वृद्ध पुरुष था। न तो नबूकदनेस्सर के युग में पीढ़ी का अंतर था और न ही इस युग में पीढ़ी का अंतर प्रकट हो रहा है। सुनिए दानियल बेलशस्सर से क्या कहता है। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। नबूकदनेस्सर इस पृथ्वी का एकमात्र परम प्रधान शासक था। उसके जैसा शासक न तो पहले कभी हुआ और न ही ख्रिस्त विरोधी के आने तक कोई होगा। दानियल उसे सुनाता है कि परमेश्वर ने उसके नाना के साथ क्या क्या किया था। परमेश्वर ने उसे विश्व शासक बनाया था और बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर के विविध अनुभव सुनाए। मेरे प्रियो, आगे लिखा है दानियल 5 उसके 20 से 24 पद में, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा हो गया और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस के नीचे भींगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवा कर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। मेरे मित्रों, दानियल बेलशस्सर को कठोर एवं प्रभावशाली उपदेश सुनाता है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दिया था और वह प्रभुता प्रधान था। उससे प्रश्नोत्तर करने का साहस किसी में नहीं था। उसकी इच्छा और मनोदशा ही देश का कानून थी, परंतु घमंड में आ जाने पर परमेश्वर ने उसे दीन बनाया। यह घटना बड़ी ही त्रासदीपूर्ण थी। दानियल बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर के अपमान की घटनाएं सुना रहा था, तो आपके विचार में क्या वह बेलशस्सर को डरा रहा था? अति संभव है। वह उससे कहता है कि उसका घमंड या तो शराब के नशे के कारण था या उसके पागलपन के कारण था। बेलशस्सर घमंडी और सांसारिक मनुष्य था। वह अपने नाना के पागलपन के दौरों के बारे में जानता था। वह यह भी जानता था कि वह एक पशु की नाई हो गया था, परंतु उसने उससे सबक नहीं सीखा। इसके विपरीत उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को काम में लेकर अनाचार किया। उसने इन पात्रों को अशुद्ध करके परमेश्वर को चुनौती दी और परमेश्वर की निंदा और ठट्ठा किया। वह सत्य को जानता था, परंतु फिर भी उसने सत्य का तिरस्कार किया। जैसा कि आज हम में से कई मनुष्य हैं जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसका तिरस्कार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन पर ही विनाश ढाता है जो सत्य को जानकर उसका तिरस्कार करते हैं। महाक्लेश में भ्रमित होने वाले वही होंगे जिन्होंने ज्योति को तुच्छ जाना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9-12 पद में पौलुस लिखता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, दानियल परमेश्वर के काम करने का सिद्धांत बेलशस्सर पर प्रकट कर रहा था। पौलुस ने भी इसकी पुष्टि की है और प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:43 पद में इस बात को स्पष्ट किया था, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। आप सत्य से मुंह मोड़कर किसी भी धार्मिक पंथ के लिए अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। आज इस धार्मिक पंथों और समुदायों का विकास इतना अधिक क्यों हो रहा है? मनुष्य नाना प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित करता है, परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के वचन का त्याग करने वाले शैतान के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की इच्छा है, आपका और मेरा विचार नहीं। दानियल अंत में कहता है कि वह लेख उस परमेश्वर का संदेश है जिसे बेलशस्सर ने तुच्छ जाना, जिसकी उसने निंदा की और ठट्टा उड़ाया। कुछ का कहना है कि उसने अक्षम्य पाप किया था, अर्थात जिस पाप का क्षमा नहीं है। इसका उत्तर मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि उसके पास सत्य को ग्रहण करने का यह एक सुनहरा अवसर था, परंतु उसने उसे ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं दीवार पर लिखे लेख का अनुवाद दानियल करता है। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। एक बार एक परदेशी अपनी पुत्री के कहने पर आराधना करने के लिए गया। वहां प्रचारक प्रचार का पद यही ले रखा था, मने मने तकेल उपरसीन। वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था, अतः इन शब्दों को वह अपनी भाषा में समझा रहा था, मिनी मिनी मुझे गुदगुदा। वह तुरंत अपनी पुत्री को लेकर वहां से भागा, क्योंकि उसकी पुत्री का नाम मिनी था। परंतु उस लेख का अनुवाद यह नहीं था। उसका अनुवाद हम दानियल से सुनते हैं, जो दानियल की पुस्तक 5 अध्याय के 26 पद में लिखा है। लिखा है, इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने का अर्थ है संख्या, और दो बार मने मने कहने का अर्थ है गिनना, अर्थात परमेश्वर ने बेबीलोन के दिन गिन दिए थे। यह वैसा ही है जैसा हम कहते हैं उसका समय आ गया है। भजन संहिता 90:12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। केवल परमेश्वर ही जानता है कि हमारा समय कब आएगा और हमारी लौकिक यात्रा कब समाप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, एक युवक हवाई यात्रा से बहुत डरता था। वह कहता था कि पता नहीं हवाई जहाज कब धरती पर गिर जाए। उसके मित्रों ने कहा, यदि तेरा समय आ गया तो तू हवाई जहाज में हो या धरती पर, मरना तो तुझे होगा ही। उसने उत्तर दिया, मुझे अपनी चिंता नहीं है, यदि पायलट का समय आ गया तो क्या होगा, इसलिए मैं हवाई जहाज में जाना नहीं चाहता। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने बेबीलोन के दिन गिन लिए थे। वह हर एक दिन के एक एक पल का लेखा रखता है। उसने हमारी आयु लिख ली है, हम उसे बदल नहीं सकते। मेरे प्रियो, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन की लेख परमेश्वर के हाथ में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे प्रिय हमसे दूर हो गए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यह परमेश्वर की नियुक्त समय है। आज मुझे और आपको अपने जीवन से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सब पर प्रभुता रखता है। इतना ही नहीं, वह नहीं चाहता कि किसी भी रीति से हम परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बने, हम परमेश्वर को अपमान दें। वह चाहता है कि हम उसको आदर दें, क्योंकि उसने हम मनुष्यों को इसीलिए बनाया है। परंतु आज दुख की बात तो यह है कि हम मनुष्य उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं। आइए आज हम अपने जीवन में थोड़े समय मौन रहकर विचार करें, अपने जीवन को देखें कि प्रतिदिन का भोजन, वस्त्र, ठहरने का स्थान जो हमारे पास है, यह परमेश्वर के द्वारा है। मेरे प्रियो, इस राजा ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर संकट आ गया। अब उसके दिन समाप्त होने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन को हम अंत के निकट ला रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही बेलशस्सर के जीवन से अपने जीवन के लिए सीखा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।